ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति के उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित उत्तर प्रदेश के जिस पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा, वे आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और उपचार दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। ये विश्वविद्यालय रोजगार के नए रास्ते खोलने और क्षेत्र में औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाएंगी और उसके बाद वे सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आरोग्य धाम परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और पंचक्रम केंद्र का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वे गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखेंगी। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रणनीतिक पहल में भारत, जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने पहला क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है। विल्मिंगटन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश के 2 अधिकारी शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि क्वाड संगठन के विदेश मंत्री इस वर्ष 21 जनवरी को विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक में हुए विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प से डिजिटल भुगतान क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज डिजिटल इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक बाद समग्र देश एक ऐसी यात्रा का साक्षी बना है जिसने असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया और सशक्तिकरण के नए दौर में प्रवेश करने में सहायक बना। युवा कार्य विभाग और डिजिटल इंडिया कारपोरेशन ने कल नई दिल्ली में माई भारत के दूसरे चरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता युवा सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी के तालमेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा कार्य मंत्री ने कहा कि इस समझौते से माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत 1,76,00,000 से अधिक युवाओं को लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहां युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। माल और सेवा कर जीएसटी लागू किए जाने की आज 8वीं वर्षगांठ है। जीएसटी लागू किया जाना देश के कर इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। इससे कर व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है और व्यापार अनुकूल माहौल सृजित हुआ है। जीएसटी से कराधान में पारदर्शिता, कुशलता और स्थिरता सुनिश्चित हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्र के अनेक भागों में अगले 5 से 6 दिन तक मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आज अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, पूर्व राजस्थान, गुजरात और झारखंड में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विद्यार्थियों में फुटबॉल के प्रति रुचि और मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में लगभग 10,00,000 फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में इस अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 88,000 फुटबॉल बांटे जाएंगे जिससे लगभग 15-16 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।